بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 10 ہے. آج ہم کتاب مطالعہ پاکستان لازمی ریکارڈ کر رہے ہیں برائے BA BSc BCOM جدید نصاب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مطابق. اس کتاب کے مصنف محمد نعیم طاہر PhD ریسرچ اسکالر ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ پیج نمبر 99 ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 10. نیوتا دلہن اور دلہا کو سلامی دینے کا طریقہ بھی ہماری ثقافت میں ہندو مت سے شامل ہوا ہے. کھیل تماشے اور میلے. کھیل تماشے اور میلے عرس کرانے کا رواج بھی پاکستان میں عام ہے. یہ میلے وغیرہ پاکستانی تہذیب کا اہم حصہ ہیں. مختلف مواقع پر بزرگان دین کے عرس منعقد کیے جاتے ہیں جن کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے کھیل تماشے اور میلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے. علاوہ ازیں بزرگان دین کے سالانہ ختم شریف کے مبارک موقع پر عقیدت مند حاضری دینے کے لیے آتے ہیں جس کی بنا پر ایک میلے کا سسما ہوتا ہے. ان میلوں اور سالانہ ختم شریف کے مواقع پر کھیلوں اور تماشوں کا بندوبست کیا جاتا ہے جو کہ ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہے. پیدائش اور اموات کی رسمیں. بچے کی پیدائش کے موقع پر خواتین کے خوشی کے اظہار کے لیے مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے. شادیانے بجائے جاتے ہیں. لوگ اس گھر کی خوشی میں شمولیت کرنے کے لیے نومولود کے گھر میں جاتے ہیں اور خوشی کے اظہار کے لیے نومولود کو تحفے تحائف یا کچھ روپے اور والدین کو مبارکباد دیتے ہیں. نومولود کے کان میں اذان دے کر اسے شروع ہی سے اسلام کی طرف راغب کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت سے آگاہ کیا جاتا ہے. اسی طرح اموات کے موقع پر بھی تمام عزیز و اقارب اور محلے دار افسودہ خاندان سے اظہار ہمدردی اور افسوس کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جاتا ہے اور افسودہ خاندان کے لیے عزیز و اقارب کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں. جنازے میں شرکت کے بعد ہمدردی کے طور پر چند دن اس خاندان کے پاس رہتے ہیں. اس طرح معاشرہ آپس میں بہتر میل ملاپ کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور آپس میں بہتر تعلقات استوار ہو کر ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. پاکستانی زبانیں. زبان کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے زبان کے دو معنی ہیں. نمبر ایک، وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہمارے منہ میں ہے اور وہ اپنی مختلف حرکات سے گفتگو کے دوران ہماری مدد کرتا ہے. نمبر دو، زبان سے مراد لفظوں یا آوازوں کا مجموعہ بھی ہے جو ہم دوران تکلم استعمال کرتے ہیں. چنانچہ وہ تمام آوازیں، حروف اور الفاظ جو تحریر یا تقریر میں لائے جاتے ہیں زبان کے زمرے میں آتے ہیں. اصطلاحاً اس کے معنی ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے احساسات، جذبات اور مطالب کے ابلاغ کا کام لیتا ہے اسے زبان کہتے ہیں. زبان ثقافت کا حصہ ہے کیونکہ احساسات، خیالات اور محسوسات کے اظہار کے لیے زبان اہم ترین ذریعہ ہے. زبان قوم کی شناخت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قوم اپنی زبان کو عزیز سمجھتی ہے اور اس کے فروغ کے لیے مناسب اقدام کرتی ہے. دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. کسی ایک ملک میں بولی جانے والی تمام زبانیں اس ملک کی ثقافت کا حصہ ہوتی ہیں. البتہ ان میں سے ایک کو قومی رابطے کے لیے زبان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اسے قومی زبان کہتے ہیں. قومی زبان کو دوسری زبانوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب دوسری زبانوں کو نظر انداز کرنا نہیں. یہ تمام زبانیں جو اپنے اپنے مخصوص علاقوں میں پھلتی اور پھولتی ہیں قوم کا مجموعی ثقافتی سرمایہ ہے. پاکستان میں بھی کئی زبانیں بولی جاتی ہیں. ان میں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتو خصوصی اہمیت کی حامل ہیں. اردو پاکستان کی قومی زبان ہے جو پاکستان کے ہر علاقے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. اردو زبان. برصغیر میں شمال کی طرف سے آنے والے مسلمان فاتحین ترکی نسل کے تھے. ان کی مادری زبان ترکی تھی، لیکن انہوں نے فارسی کو سرکاری زبان قرار دیا. عربی قرآن و حدیث کی زبان تھی. مسلمانوں نے جب جنوبی ایشیا میں اپنی حکومت قائم کی تو انہوں نے اپنے لشکروں میں مختلف علاقوں کی مختلف بولیاں بولنے والے لوگوں کو بھرتی کیا. اس طرح عربی، ایرانی، ترکی، ہندوستانی، پنجابی، कश्मीरी, बलोची और बंगाली वगैरह के मेल जोल से एक नई जबान पैदा हुई, क्योंकि ये जबान छावनियों में लश्करियों की वजह से पैदा हुई, इसलिए इसे उर्दू का नाम दिया गया। तुर्की जबान का लफ्ज है जिसके माने लश्कर के हैं। इब्तदा में इस नई जबान को हिंदी, हिंदवी और हिंदुस्तानी कहा जाता था। उस दौर के शायर अमीर खुसरो हैं जिन्होंने फारसी के साथ साथ हिंदी को भी इस्तेमाल किया। बाद में इसे रेख्ता का नाम दिया गया। रेख्ता के माने गिरी पड़ी या मुख्तलिफ जबानों से पुख्ता की हुई जबान है। क्योंकि ये जबान मुख्तलिफ बोलियों से बनी थी, इसलिए इसे रेख्ता कहा जाने लगा। ये नाम मुसफ़ी से गालिब तक चलता रहा। उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है जिसके माने लश्कर के हैं। शाहजहां ने आगरा के बजाय दिल्ली को अपना पाया तख्त बनाया तो दिल्ली में लश्करी और खवास एक साथ रहने लगे। बादशाह ने इस बाजार को उर्दू मोहल्ला का नाम दिया। इस नस्बत से वहां बोले जाने वाली जबान उर्दू मोहल्ला या जबान दहलवी कहलाती। उस दौर के शौरा में गालिब, मोमिन और बहादुर शाह जफर के नाम मशहूर हैं। इसके बाद ये जबान उर्दू के नाम से मशहूर हुई। जब ये जबान दक्कन और गुजरात पहुंची तो ये दक्कनी और गुजराती कहलाने लगी। उर्दू का पहला साहिबे दीवान शायर सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह वाली गोलकंडा था। दक्कन ही के वली दक्कनी का शुमार उर्दू के इब्तदाई शोरा में होता है। उर्दू शायरी को जिन लोगों ने औजे कमाल तक पहुंचाया उनमें आरजू, सौदा, मीर तकी मीर और मीर दर्द के नाम बड़े अहम हैं। अंग्रेज ने हिंदुस्तान की नफ्सियात को समझने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी, जिसमें उर्दू को जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग करने की कोशिश की गई। 19वीं सदी के आगाज से ही नज्म के साथ साथ नसर का भी आगाज हुआ। 1857 में जब अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हो गए तो अंग्रेजी को सरकारी जबान करार दे दिया गया। उर्दू जबान ने अंग्रेजी से भी इस्तफादा किया और अंग्रेजी जबान के बहुत से अल्फाज को अपनाया। सर सैयद अहमद खान ने तहरीक अलीगढ़ शुरू की तो उर्दू अदब में नसर ने नुमाया तरक्की की। सर सैयद और उनके रुफाका ने नजम व नसर में नए तजुर्बात किए और उर्दू को नई जहतों से रोशनास कराया। 20वीं सदी के उर्दू अदब की तारीख में अल्लामा इकबाल को सबसे बुलंद मकाम हासिल है। उनकी शायरी उर्दू और फारसी जबानों में है। अल्लामा इकबाल के बाद तरक्की पसंद तहरीक ने फरोग पाया। इसमें अकलियत पसंदी पर जोर दिया गया। यूं अवामी अदब परवान चढ़ा। इस तहरीक के नामवर अदीब मुंशी प्रेमचंद हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू पाकिस्तान की कौमी जबान बनकर इस खत्ते में वारिद हुई और इसकी मुख्तलिफ असनाफ में नुमाया काम हुआ। उर्दू जबान में शायरी और मजमून नवीसी के अलावा नावल निगारी, ड्रामा निगारी, अफसाना निगारी और तहकीक व तनकीद में बहुत काम हुआ। उर्दू पाकिस्तान की कौमी, मुल्की, तालीमी और सरकारी जबान है। इस बारे में कायदे आजम ने फरमाया था कि पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू और सिर्फ उर्दू होगी। उर्दू जबान की अहमियत। उर्दू पाकिस्तान की कौमी जबान है। ये दुनिया की तीसरी बड़ी जबान है। इसकी अहमियत का अंदाजा मंदरजा झैल नुकात से लगाया जा सकता है। तहरीक पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिए के फरोग में उर्दू का बड़ा अहम किरदार रहा है। हिंदुओं की तंग नज़री और तासुब ने जबान के मसले को सियासी बना दिया। उन्होंने सरकारी दफ्तरों और तालीमी इदारों में उर्दू को खारिज करने और संस्कृत आमेज हिंदी को ठूसने की कोशिश की। उर्दू हिंदी झगड़े ने बरेसगीर की सियासत में खासा तल्ख माहौल पैदा किया। उर्दू के खिलाफ हिंदुओं की नफरत के रद्द अमल में बरेसगीर के हर इलाके के मुसलमान उर्दू को अपनी जबान समझते थे और इसकी तरवीज और अशात में पेश पेश नजर आते थे। इसी सूरत हाल में 1947 में बरेसगीर के मुसलमान एक ऐसे मुल्क के मालिक बने जिसके शहरी की हैसियत से वो अपनी जबान और तहजीब की हिफाजत कर सकते थे। कौमी जबान। तहरीक पाकिस्तान में उर्दू जबान की खिदमत से कायदे आजम बहुत मुतासर हुए और उन्होंने कौमी जबान बनाने का फैसला कर लिया। आपने मार्च 1948 में ढाका यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए फरमाया कि उर्दू ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को बाहम मुत्तहिद रख सकती है, इसलिए इस मुल्क की सरकारी जबान सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी। इल्मी और तहजीबी सरमाया। दीनी सरमाए के अलावा उर्दू का दामन इल्म अदब और इस्लामी तहजीब और सकाफत से भी मालामाल है। उर्दू का ये कीमती सरमाया किसी भी तरक्की याफ्ता जबान के मुकाबले में पेश किया जा सकता है। दीनी सरमाया। اردو لشکری زبان تھی، لیکن اس میں ابتدا ہی سے اسلامی اثر غالب تھا۔ اردو کی ابتدائی زبانیں ترکی، عربی اور فارسی تھیں، جو مسلمانوں کی زبانیں تھیں۔ صوفیاء کرام نے بر عظیم میں دین کی تبلیغ اسی زبان میں کی۔ شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے اردو میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد اس زبان میں تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت، تاریخ، اسلام، بزرگوں کے تذکرے، ملفوظات کا وسیع ذخیرہ اردو کے دامن میں محفوظ ہے۔ وسیع ذخیرہ الفاظ، اردو کا دامن وسیع ذخیرہ الفاظ سے مالا مال ہے، اور روز بروز اس ذخیرے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وسیع ذخیرہ الفاظ کے باعث یہ زبان مختلف مضامین اور خیالات کو پیش کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتی ہے۔ علمی و تہذیبی سرمایہ، دینی سرمایہ کے علاوہ اردو کا دامن ہمارے علم و ادب اور تہذیب و ثقافتی ورثے سے بھی مالا مال ہے۔ ہم اپنے اس قیمتی سرمایہ کو پورے فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ٹائپ کی آسانی، اردو زبان میں جہاں فن خطاطی کے بہترین نمونے پائے جاتے ہیں، وہاں اس کا ٹائپ بھی آسانی کے ساتھ مستعمل ہے، جس کی وجہ سے نشر و اشاعت کا کام تیز رفتاری کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام بول چال کی زبان، اردو زبان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے تمام صوبوں میں ایک عام بول چال کی زبان کی حیثیت سے استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں اسے بولا اور سمجھا جاتا ہے، کسی دوسری زبان کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ پاکستان میں اردو زبان کی ترقی کے روشن امکانات ہیں۔ اردو زبان و ادب کا فروغ تحریک پاکستان کے مقاصد میں شامل ہے۔ ایک ترقی یافتہ زبان کی حیثیت سے اردو میں دفتری زبان بننے کی پوری صلاحیتیں ہیں۔ اس کی مزید ترقی پاکستانی قوم کا فریضہ ہے۔ پاکستان کی علاقائی زبانیں، اگرچہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور اعلیٰ سطح پر یہی زبان ذریعہ تعلیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کی مختلف علاقائی زبانیں بھی مقامی اہمیت کی حامل ہیں اور اردو کی ترقی میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی وغیرہ کے ذریعے اردو پر گہرے مقامی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مختلف علاقائی زبانیں گویا ندی نالے ہیں اور اردو کے بہرے بے کراں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، پنجابی۔ پانچ دریاؤں کی سرزمین کے اندر قدیم دور میں وادی سندھ کی دراوڑ تہذیب اور رگ ویدک کی آریہ تہذیب نے فروغ پایا۔ مسلمان فاتحین اس علاقے سے گزر کر برے صغیر آئے۔ بعض محققین کی رائے ہے کہ پنجابی کا ماخذ ہندی آریاؤں کی زبان سنسکرت کی ایک ذیلی پراکرت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پنجابی زبان سنسکرت سے بھی پرانی ہے۔ یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں تسخیر پنجاب سے پہلے بھی جو زبان اس خطۂ ارض میں بولی جاتی تھی وہ پنجابی تھی۔ محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود کے دور کا ایک شاعر سعد سلمان، جو لاہور میں پیدا ہوا اور اس نے فارسی زبان کے علاوہ پنجابی زبان میں شاعری کی، لیکن اسے وہ ہندی کے نام سے پکارتا ہے۔ پنجابی زبان نے مسلمانوں کے تہذیبی ماحول سے متاثر ہو کر خوب فروغ پایا۔ اس میں فارسی کے بہت سے الفاظ شامل ہو گئے۔ اس کا رسم الخط بھی فارسی ہو گیا۔ حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں پنجابی اور اردو کے متعدد مشابہ الفاظ لکھے ہیں۔ اپنی قد و قامت کے باوجود پنجابی زبان ایک علاقائی بولی سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ پنجابی تاریخ میں کبھی بھی کسی علاقے کی سرکاری، تجارتی، تعلیمی اور مذہبی زبان نہیں رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پنجابی زبان پر جغرافیائی ماحول کا بڑا اثر رہا ہے۔ یہ زبان پنجاب کے مختلف علاقوں میں الگ الگ لب و لہجے سے بولی جاتی رہی ہے، اور ان علاقوں میں اس کے علیحدہ نام ہیں۔ مثلاً راجپوتانہ کے علاقے شمالی بیکانیر میں بولی جانے والی پنجابی ہاکڑی، ستلج کے مشرقی علاقے میں مالوی، دو آب کے علاقے میں ماجھی، دو آبا بست جالندھر میں دو آبی، علاقہ پوٹھوہار میں پوٹھوہاری، اور ملتان اور بہاولپور میں سرائکی کہلاتی ہے۔ ایک بولی کی اتنی شاخیں اس کی ترقی میں رکاوٹ بنی رہیں۔ پنجابی کی ترقی میں صوفیاء کرام اور علماء کرام کا حصہ۔ پنجابی زبان کی ترقی کا اصل دور اس وقت شروع ہوا جب مسلمان علماء اور صوفیاء کرام نے اس زبان میں تبلیغ اسلام اور رابطہ عوام کا ذریعہ بنایا۔ پنجابی زبان میں فارسی اور عربی الفاظ بڑی تیزی سے مقبول ہوئے۔ इन बुजुर्गान दीन ने इस्लाम, कुरान और हदीस समझाने के लिए मुख्तसर रिसाले, गीत और नज़में तहरीर कीं। रस्मुल खत और हुरूफ तहज्जी अरबी और फारसी के थे, लेकिन जबान पंजाबी थी। इन किताबों में मीठी रोटी, मिस्सी रोटी, निजातुल मोमिनीन, मेराजनामा और नूरनामा मशहूर हैं। पंजाबी शायरी की इब्तदा। पंजाबी जबान का अवलीन शायर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को कहा जाता है। उस अहद की जबान सादा और आसान थी और शायरी और नसर में सूफियाना रंग गालिब था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के अलावा हजरत शाह मीरा और हजरत शाह बुरहान बड़े बड़े शायर थे। पंजाबी जबान के दूसरे दौर में हजरत सुल्तान बाहू का नाम बहुत बड़ा है। उनके कलाम हू के अल्फाज से पहचाना जाता है। उस दौर के दूसरे शुरा में हजरत बुल्ले शाह, करम अली शाह, अली हैदर, गुलाम रसूल और गुलाम फरीद बहुत मशहूर हैं। उस दौर में दीन के बुनियादी उसूल छोटी छोटी नज़मों के जरिए आवाम तक पहुंचाए गए। मजमूई तौर पर यह बात कही जा सकती है कि तबलीग दीन के सिलसिले में दूसरे इलाकाई जबानों के मुकाबले में पंजाबी जबान से बहुत काम लिया गया। उस दौर में हिदायतुल इस्लाम, राज़िक़े बारी, दरवाज़ाए बहिश्त, मैयत नामा, हिदायतुल मुस्लिमीन, सिराज मोहम्मदी, शमाए मोहम्मदी, सीरतुल हबीब, कससुल अंबिया मशहूर किताबें लिखी गईं। पंजाबी शायरी में दास्तान गोई का एक मुनफरिद मुकाम है। उन शायरों ने पंजाब की लोक दास्तानों को नज्म किया है। पंजाब के सबसे बड़े शायर वारिस शाह ने हीर रांझा में पंजाब के रोजमर्रा की जिंदगी की बेहतरीन तर्जुमानी की है। पंजाबी जबान के लोकगीत बहुत रसीले हैं। हीर रांझा के अलावा हाशिम शाह का किस्सा, सस्ती पुन्नू, फजल शाह का किस्सा, सोहनी महीवाल और हाफिज बरखुरदार का किस्सा, मिर्जा साहिबा, मियाँ मोहम्मद बख्श का किस्सा, सैफुल मलूक और मौलवी मौलवी गुलाम रसूल का किस्सा, यूसुफ जुलेखा बहुत मशहूर है। इन किस्सों में बुलंद पाया शायरी उस वक्त के पंजाब की तारीखी, मुआशी, मजहबी और माशर्ती जिंदगी का मुकम्मल नक्शा मिलता है। काफियाँ। पंजाबी अदब में काफी बहुत मकबूल है। इस फन के जिंदा जावेद नाम शाह हुसैन लाहौरी, हजरत बुल्ले शाह, सुल्तान हानू और ख्वाजा फरीद बहुत मशहूर हैं। जदीद अदब। 20वीं सदी के आगाज में इस जबान में नॉवेल, ड्रामा और अफसाना लिखने का आगाज हुआ और पंजाबी सहाफत भी शुरू हो गई। आर्ट, लिसानियात, जुग्राफिया, तिब, कानून, फलसफा वगैरह पर किताबें लिखने का रुझान पैदा हुआ है। इस लिहाज से जबान का मुस्तकबिल रोशन नजर आता है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए की सतह तक पंजाबी में तालीम दी जाती है। पंजाबी के जदीद शोरा में सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, शरीफ कुंजाही, अब्दुल मजीद भट्टी, रशीद अनवर, सज्जाद हैदर, मुनीर नियाजी और अहमद राही काबिले जिक्र हैं। नंबर 2, सिंधी जबान। सिंधी पाकिस्तान की एक कदीम जबान है। इस जबान पर द्रावड़ी, संस्कृत, यूनानी, तुर्की, ईरानी और दीगर कई जबानों का असर नुमाया है। अंग्रेजों की बरसगीर में आमद के बाद अंग्रेजी जबान के बेशुमार अल्फाज भी सिंधी में शामिल हो गए। इस तरह सिंधी जबान का अदब और जखीरा अल्फाज बहुत वसी है और ये जबान अपने कदीम तहजीबी वरसे के बायस मुख्तलिफ बाकी जबानों के नस्बत ज्यादा पुख्ता है। सिंधी जबान एक वसी और अरीज इलाके में बोली और समझी जाती है, इसलिए इसके कई लहजे मिलते हैं। सिंधी के जैरी और राजस्थानी इलाके में लाड़ी, कच्छी, काठियावाड़ी और थरी की बोलियां बोली जाती हैं। बलूचिस्तान में जोगाली, गंदावी, फिक्री, लासी, कच्ची, लारी और जनई के लहजे बोले जाते हैं, जबकि बाकी इलाकों में मुरवजा बोलियों को कोहिस्तानी, सरायकी और विचोली कहा जाता है। इसका मयारी लहजा इल्मी अदब और सहाफती अदब में मुनफरिद मकाम रखता है। बाबुस सलाम। सिंध बाबुल इस्लाम कहलाता है। मोहम्मद बिन कासिम की आमद से यहाँ अरबी जबान और अदब का इतना रवाज हुआ कि थोड़े ही अरसे में यहाँ शायर, मुहद्दिस और उलमा पैदा होने लगे। इस्लाम से पहले सिंधी इतनी तरक्की याफ्ता न थी, अलबत्ता सिंधी में लिखने पढ़ने का रवाज आम था। पूरे इस्लामी दौर में मकामी जबानों में सिंधी ही वाहिद जबान थी जिसमें कुरान पाक का तर्जुमा किया गया। 1051 ईस्वी में जब सिंध पर सुमरु खानदान काबिज हुआ तो सिंधी जबान ने बड़ी तरक्की की, क्योंकि सुमरु खानदान खुद सिंधी था। उस दौर में सिंधी जबान में कई दास्तानें लिखी गईं। सुमरू खानदान के बाद सिंध पर समा खानदान की हुकूमत कायम हुई। उस दौर में सिंधी जबान ने काफी तरक्की की। उस दौर में सरकारी जबान फारसी थी, लेकिन हाकिमों और अवाम की रोजमर्रा की जबान सिंधी थी। 1951 में सिंध मुगलिया बादशाहत में शामिल हुआ तो सिंध के उलमा दिल्ली और आगरा में इल्म हासिल करने लगे। उस दौर में सिंधी रस्मुलखत की बुनियाद मखदूम अबुल हसन ने डाली। सिंध की तारीख के मुतालिक मशहूर किताब तारीख मासूरी भी इसी अहद में लिखी गई। सिंध पर जब 1718 ईस्वी में कलहोड़ा खानदान काबिज हुआ तो उस दौर में सिंधी जबान ने बहुत तरक्की की। उस जमाने को सिंधी शायरी का सुनहरी दौर कहा जाता है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सिंधी अदब के अजीम शायर थे। उन्होंने अपनी बुलंद पाया शायरी से सिंधी अदब को मालामाल कर दिया। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने आम जिंदगी और गरीबों मेहनतकश तबके की जिंदगी की तर्जमानी की और इंसानी अजमत को दोबाला किया। आपने शायरी के लिए तमसीली अंदाज इख्तियार किया। वो अपने कलाम को खास मौसीकी में पेश करते थे। वो अपनी शायरी का बुनियादी मवाद सिंध की लोक कहानियों से लेते थे। इसी वजह से सिंध के गोशे गोशे में आपकी शायरी की धूम है। शाह जो रिसालो आपका मजमुआ कलाम है। सच्चल सरमस्त शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बाद सिंध के सूफी शौरा में हजरत अब्दुल वहाब सच्चल सरमस्त को बड़ी शोहरत मिली। सच्चल के माने सिद्दीक के हैं। सच्चल सरमस्त हजरत बुल्ले शाह से बहुत मुतासिर थे। इश्को मस्ती में बहुत ऊंचा मकाम रखते थे। रांझन तख्त हजारा जंग सियाल को रमज़ो इशारे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। पंजाबी और उर्दू जबान भी जानते थे और इन जबानों में शेर कहते थे। वहदतुल वजूदी थे। उनके दौर में सिंधी जबान में बहुत से मजहबी उलूम पर किताबें लिखी गईं। जदीद दौर में सिंधी अदब सिंधी में भी दूसरी जबानों की तरह जदीद अदबी रुझानात से मुतासिर हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद सिंधी अदब ने बहुत तरक्की की और इसमें हर किस्म की किताबें लिखी जाने लगी हैं। सिंधी को अब आला तालीम के दर्जों तक जरिया तालीम बनाया जा रहा है। हुकूमत ने इसकी तरक्की के लिए सिंधी अदबी बोर्ड के लिए खदमात सर अंजाम दे रही हैं, जिससे इसके अदब में गिरा बहा इजाफा हुआ है। जदीद अफसाना ड्रामा और अदबी तख्लीकात और दूसरे इल्मी मैदानों में बहुत काम हुआ है। जदीद सिंधी अदब की मशहूर शख्सियात मिर्ज़ा खलीज बेग, अल्लामा दाऊद पोता, मोहम्मद सिद्दीक मेमन, शेख अब्दुल रजाक राज, शेख अयाज, हैदर बख्श जदोई, अली मोहम्मद राशदी, नबी बख्श बलोच, हस्सामुद्दीन राशदी वगैरह मशहूर हैं। नंबर 3, पश्तो जबान। पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में बसने वाले अफगान पठान या पश्तून कहलाते हैं। उनकी जबान पश्तो कहलाती है। इनके बारे में 3 मुख्तलिफ नजरियात पेश किए जाते हैं। नंबर 1, ये बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल की औलाद हैं। नंबर 2, आर्या नस्ल हैं। नंबर 3, आर्याओं के खुरूज के वक्त बलख के मुतमद्दिन इलाके के बसने वालों की औलाद हैं। पश्तो अदब का तमाम सरमाया अपने माहौल का आईनादार है। इस्लामी तालीमात का पश्तो जबान और अदब पर गहरा असर पड़ा। मजहबी जज्बा पश्तों के लिए अरबी रस्म अल-ख़त इख्तियार करने का मुहर्रिक बना। पश्तो अदब का कदीम हिंदू देव माला की दास्तान से दूर का ताल्लुक भी नहीं और ना ही इसमें बुद्ध रिवायात का कोई सुराग मिलता है। पश्तून अदब की कदीम तरीन तसनीफ लंडी पापटा है, जो तबई जज्बात के इजहार का जरिया है। इसके अवलीन नमूने 1500-2000 साल कबल अज़ मसीह के दौर से मुतालिक बयान किए जाते हैं। इस तरह पश्तो अदब की तारीख भी इतनी ही पुरानी बनती है। चूंकि पश्तून इलाका मुख्तलिफ कौमों के हमलों का निशाना बनता रहा, इसके कदीम पश्तो अदब के लोक गीतों के सिवा कुछ महफूज न रहा। इन लोक गीतों में पश्तून तहजीब व तमद्दुन और रस्म व रिवाज की झलकियाँ पाई जाती हैं। पश्तों के असनाफ सुखन में रुबाई और गजल खसूसी अहमियत रखती है। पश्तो रुबाई क़िता से मुमासलत रखती है और तकरीबन 1000 साल पुरानी है। पश्तो गजल पर फारसी का गहरा असर है। अमीर करोड़ को पश्तो जबान का पहला शायर कहा जाता है और मिर्जा खान अंसारी को पश्तो का पहला साहिब दीवान शायर करार दिया जाता है। मुगल दौर के अजीम शायर खुशहाल खान खटक थे। वो अजीम शायर होने के साथ साथ तलवार धनी और मुहब्बे वतन इंसान थे। खुशहाल खान खटक के बाप दादा मुगल बादशाहों की वफादारी का दम भरते थे। खुशहाल खुद खुशहाल खान खटक भी शाहजहां के लिए मुख्तलिफ मार्कों में दाद शुजात दे चुके थे, लेकिन औरंगजेब के दौर में मुगलों की कैद में रहे उनके दिल में मुगलों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। उनके कलाम में उन तमाम जंगों और मार्कों का जिक्र मिलता है जो उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ी। उनकी शायरी कौमी गैरत की आईनादार होने के साथ साथ बहुत सी इल्मी और तारीखी मालूमात का जखीरा भी है। उन्होंने गजल का मकाम बुलंद और मौजू वसी करके पश्तो शायरी को दर्जा कमाल तक पहुंचा दिया। उनका दीवान अदब शाह दीवान अदब शाहकार होने के साथ साथ एक कीमती तारीखी सियासी दस्तावेज भी है। रहमान बाबा पश्तो अदब के दूसरे बड़े शायर हैं। ये फकीर सिफ्त शायर हमेशा इश्को तसव्वुफ में डूबे रहते थे। उनके नजदीक इश्क ही कायनात की तखलीक का बायस है। आपको पश्तून माशरे में एक बुलंद मकाम हासिल है। उनकी शायरी में मोहब्बत इलाही का कैफ सुरूर झलकता है। खुशहाल और रहमान बाबा का अंदाज पश्तो अदब में निशान मंजिल की हैसियत रखता है और इसके असरात बाद में आने वाले शोरा में नुमाया हैं। पश्तो नसरी अदब ने 20वीं सदी में तरक्की करनी शुरू की। जदीद तालीम के जरिए असर नए ख्याल रखने वालों ने पश्तो लुगात, ग्रामर नवीसी, सवाने निगारी, नॉवेल और ड्रामे में अहम खिदमात सर अंजाम दी। इनमें काजी रिजवानी, बायजीद अंसारी और मुंशी अहमद जान मशहूर हैं। पश्तो जबान के तीन लहजे हैं, एक लहजा शुमाल मशरकी इलाकों का, दूसरा जनूब मगरबी इलाकों का और तीसरा जवी कबाइल का। इन तीनों लहजों के दरमियान बुनियादी तौर पर सिर्फ तलफ्फुज का फर्क पाया जाता है। पेशावर की पश्तो अकेडमी की तरफ से आज भी पश्तो को तरक्की देने और जदीद बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये अकेडमी 1954 में कायम हुई थी। नंबर 4, बलोची जबान। बलोची अपनी मुआशरत के एतबार से बादिया थे, लेकिन अब बहुत से कबाइल ने खानाबदोशी तर्क करके मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली है। इनकी जबान बलोची है। बलोची का ताल्लुक आर्याई जबानों की ईरानी शाख से है। सिंधी और फारसी अल्फाज और मगरबी बलोची में पश्तो और फारसी अल्फाज का असर है। बलोची जबान के दो अहम लहजे सुलेमानी और हुकुमरानी हैं। बलोची का इब्तदाई दौर शायरी का है और बलोची अदब ने तहरीरी सूरत बहुत बाद में अख्तियार की। बलोची शायरी को तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, लोक दास्ताने। नंबर 2, इश्किया शायरी। नंबर 3, रिज्मिया शायरी। लोक दास्तानों में बलोची कबाइल के समाजी जिंदगी का अक्स पेश किया गया है। लोरी और मोतक इसकी कदीम असनाफ हैं। बलूचिस्तान के मैदान पथरीले हैं। इन दुशवार गुजार रास्तों पर चलने वाले सारबान कदीम दास्तानों के छोटे छोटे गीत गाते चलते जाते हैं। बलोची इश्किया शायरी में अपने महबूब के हुस्न की तारीफ के साथ साथ उनकी बहादुरी का भी जिक्र होता है, जो उसकी तरफ उठने वाली मैली आंख को तीर से फोड़ देती है। बलोची की रिज्मिया शायरी में अपने अपने कबीले के जियालों की जंग आजमाई का जिक्र मिलता है। जब कोई कबीला फतह व कामरानी के बाद वापस लौटता है तो कबीले में चरागा होता है और ढोल की ताल पर हालो गीत गाए जाते हैं। बलोची शायरी का मिजाज भी रिज्मिया है। बलोची जबान ऐसे इलाकों के लोगों की बोली है जो अपनी बहादुरी और जुर्रत के लिए मशहूर हैं। बलोची माँ अपने बच्चे को लोई देते हुए कहती है, मेरा फूल सा बच्चा जवां होगा, कंधे पर रख बंदूक रवां होगा, मेरा फूल सा बच्चा जवां होगा। 19वीं सदी का दौर बलोची अदब का सुनहरी दौर कहलाता है। इस दौर में कहोड़ा खानदान ने बलोची इल्म और अदब की सरपरस्ती की। 1840 को एक अंग्रेज मिस्टर लेच ने बलोची जबान की कदीम शायरी शायरी को रूचनास कराया। अंग्रेज के दौर में बलोची तख्लीक हुई। इसमें तसव्वुफ, अखलाकियात और अंग्रेजी के खिलाफ नफरत के मौजूआत मिलते हैं। उस दौर का बुलंद पाया शायर मस्त तवक्कली है। 1940 में जबान का पहला मजल्ला शाया हुआ जिसने बलोची सहाफत और अदब को नया रुख दिया। 1942 को बलोची अदबी अंजुमन कायम हुई जिसने बलोची के कई रसाइल और जराइद जारी किए और बलोची अदब के फरोग के सिलसिले में होने वाली कोशिशों की सरपरस्ती की। क़याम पाकिस्तान के बाद बलोची का मयारी रस्म-उल-ख़त तैयार किया गया। सबसे पहले कराची रेडियो स्टेशन से बलोची नशरियात शुरू की। अब क्वेटा रेडियो स्टेशन और क्वेटा टीवी स्टेशन बलोची जबान को फ़रोग दे रहे हैं। बलोची जबान के गीत टीवी पर बहुत मकबूल हो रहे हैं। बलोची जबान दूसरी इलाकाई जबानों की तरह पाकिस्तानी अदब का तख्लीकी सरमाया है। मौजूदा दौर में बलोची के साथ साथ नसर में भी काम हो रहा है इस तरह बलोची अदब तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत। नोट, पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत इस बाब के शुरू में बयान की कर दी गई है। अब पाकिस्तान के वस्त एशियाई रियासतों से ताल्लुकात के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के वस्त एशियाई रियासतों से ताल्लुकात। मुत्तहिदा सोवियत यूनियन रकबे के लिहाज से दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क था। इसने बहुत सी रियासतों पर जबरदस्ती कब्जा जमा रखा था। अपने इस तौसी पसंदाना मंसूबे को आगे बढ़ाते हुए उसने अफगानिस्तान पर भी कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान जंग में रूस को शिकस्त हुई। जब रूसी फौज अफगानिस्तान से वापस गई तो रूसी ताकत भी पारा पारा हो गई। उस वक्त 11 जमहूरियाओं ने कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत अलमाता में आजाद ममालिक की दौलत मुश्तरका के क्याम का ऐलान कर दिया। इस तरह रूसी तसल्लुत से 6 मुस्लिम रियासतें भी आजाद हो गईं। रूस से आजादी हासिल करने वाली मुस्लिम रियासतों के नाम दर्ज झेल हैं। ये सफा नंबर 110 है। पार्ट नंबर 10 यहाँ मुकम्मल होता है।